Welcome to the second episode of Bakhabar, which is a series of thought-provoking, data-driven discussions and conversations on Pakistan's economy, on governance, and on politics. So, हम लोगों ने last time जो discuss किया था in episode one वो इसके पाकिस्तान की मईशत आखिर खड़ी हुई कहाँ पे, किस जगह पे खड़ी हुई है, और उसका मवाजना जो है, उसके comparison जो है, actually किन ममालिक के साथ किया जाना चाहिए. And the third and most important, we use that to move into this important discussion ke Pakistan ki economy ko, we've been promised that Pakistan will be an Asian tiger, it will be an economic powerhouse. To wo kya cheezein hain, wo kya challenges hain that have stopped the Pakistan economy from living up to its potential. So it's one of the important themes that we discussed was that Pakistan is a predominantly consumption-driven economy. तो जब हमने 1990 या 1991 के लेवल्स देखे तो हमें पता चला कि अबाउट 75% ऑफ द इनकम वाज फोकस्ड ऑन प्राइवेट कंजम्पशन. एंड फास्ट फॉरवर्ड 20 इयर्स फ्रॉम देन, ऑलमोस्ट 20 इयर्स फ्रॉम देन, वी स्टैंड एट अबाउट, वी हैव ग्रोन हायर देन दैट. सो 83-85% रफली ऑफ योर इनकम इज नाउ गोइंग इनटू प्राइवेट कंजम्पशन. उससे है क्या कि यू हैव वेरी लिटिल टू सेव. And when you have very little to save, then that has a dampening effect on GDP growth. So these were one of the highlights, and especially when we compared it to Bangladesh, we could see where the problem lies. So what we want to understand today is why are Pakistanis unable to save? Kyun hai itni consumption? Kyun hum log save nahi kar pate? Kyun hum log invest nahi kar pate? So we have Faiz with us again today, and hopefully he'll be able to take us through that.
Thank you for having me here again, Sanin. So this point on saving is important because, like you mentioned, ki hume pehle as a country save karna hai, phir us paise ko invest karna hai kisi tarah, just to have future income growth. Right? That's the basic conversation that we had last time. I think today let's talk more about ke Pakistani save kyun nahi kar pate. Right? And from a very basic point of view, if you think ke saving badhegi kaise, it would grow in two possible ways. Right? Ek to hai aap apni income bada do. और कंजम्पशन उतनी रखो तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, या फिर आप इनकम उतनी रखो और कंजम्पशन कम कर दो आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग, एंड दैट आल्सो हैज लाइक इंप्रूव्स योर सेविंग इन वन वे और अनदर. अब पाकिस्तान के केस में व्हाई हैवंट इनकम्स ग्रोन, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. माय हाइपोथेसिस इज इनकम्स हैवंट ग्रोन बिकॉज प्रोडक्टिविटी हैजंट ग्रोन. प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट टाइम थोड़ी बहुत बात की थी कि इज output per person hasn't grown, and we can talk about industries in a little while, lekin main overall abhi pehle flow ki baat karta hun. Jab ye is conversation ki baat hoti hai na ke aajkal inflation ke dauran mein logon ne baat karna shuru kari hai ke real incomes in Pakistan are going down. Real incomes kya hoti hai? Overall income jo aapki nominal income kehlati hai, which is jo aapko actually cash milta hai adjusted for inflation, ke mehngai kitni badi hai aur uske hisab se aapki income pe kitna farak pada hai. So real incomes, basically they say in the last 2-3 years are going down, which is very true. But isko agar thoda time horizon hum increase kare na, to hum again ye 1990s ki humne last time baat kari thi, agar hum jab se dekhen to inflation has gone up by 10x, 10 guna prices badh chuki hain in the country, right? That's an important fact to remember. Jiska agar aapki incomes basically 10 guna se zyada nahi badhi hongi, to you will be worse off. But if you start looking at real personal income, which is basically jo aapke cash aa raha hai adjusted for inflation, that actually gone up by 2.6x. So takriban 2.5 guna income, real personal income badh chuki hai. So actually you haven't been worse off as compared to inflation. To thodi bahut improvement aayi hai. Ye thodi bahut improvement aati kaise? Universally ye thodi bahut improvement jo aati hai wo aati hai from productivity, as I mentioned. लेकिन अब लेट्स लुक एट द अदर साइड, व्हिच इज प्रोडक्टिविटी कितनी ऊपर गई है. अब प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली इंक्रीज बाय अराउंड 1.6-1.7x ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आप एक्चुअली इस पूरे डेटा को स्ट्रेच आउट करें और देखें, पीपल हैव एक्चुअली बीन रिवॉर्डेड मोर देन देयर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इन रियल पर्सनल इनकम टर्म्स योर इनकम हैज गॉन अप एंड प्रोडक्टिविटी हैजंट गॉन अप बाय एज मच. तो इधर मतलब इस पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, विच इज रिवॉर्डिंग पीपल मोर देन दे वर्क और मोर देन द आउटपुट दे प्रोड्यूस, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड. तो इनकम के पॉइंट पे ये मतलब पहला, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी शुड बी डाइविंग इनटू, कि ये रियल पर्सनल इनकम ऊपर क्यों जा रही है.
सो फॉर टू अंडरस्टैंड बेटर, if I'm a business owner, if I have manufacturing set up PVA, technically, if you, I am forced now, not forced, but let's say I am paying my people a lot more, but their ability to produce more is a lagger, is still lagging behind. So I'm rewarding them, even though their productivities are not being able to match to that level. Am I getting this right?
Yeah, you are. And it's a bit of a controversial statement, so we have to tread carefully. Because I don't know how many business owners actually look at this economic data or who actually map karte honge ke real personal income kitni upar ja rahi hai, because real personal income mein phir real wages alag se aa jayengi, you know, baki jo sare components hai income ke wo alag se aa jayenge. So I don't know how many people are doing this, but yes, that fact is true ki aapki real personal income adjusted for inflation is has grown at a faster rate than the productivity of the country itself. One hypothesis could potentially be, and like when you chart it out, you will see a slight jump coming in post 2010. So ye jo ab business owner ka bahut acha example hai, because they are mandated by law to pay minimum wage. A minimum wage from 2010 to agar hum abhi 2019-2020 dekh le, तो 2010 में होती थी 7,000 रुपए मिनिमम वेज, विच मीन्स अनस्किल्ड लेबर को आपको कम से कम महीने का 7,000 रुपए देना ही देना है. उसके ऊपर अब जो है इन 2019 दोज नंबर्स आर एट 17,500, 7,000 से 17,500 तक वो अमाउंट गया है मिनिमम वेज का. आई डोंट नो इफ द प्रोडक्टिविटी वेंट अप एट द सेम रेट, बिकॉज दिस इज मोर देन डबलिंग of minimum wage, and I'm pretty sure actually that productivity hasn't doubled during that period of time.
So the minimum wage ki baat karte hain, it's very interesting. Kehne ko to minimum wage is legislated, is mandated, but what in your opinion, kehna bada aasan hai on paper, but how many people, how much do you think this is practical and realistic ke minimum wage actually pay ki jaati hai?
काश मतलब पाकिस्तान का लेबर डेटा और इलैबोरेट होता, एंड आई कुड गिव यू अ मोर डेफिनेट आंसर. अगेन इन कॉन्वर्सेशंस आई हैव हैड, बेसिकली फर्स्ट थिंग टू थिंक अबाउट इज पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी कितनी है. पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी इज व्हाटएवर 70% ऑफ योर लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इनफॉर्मली. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स. तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, रूरल एरियाज में इसका प्रोपोर्शन और ज्यादा है, अराउंड 76-75%, और अर्बन में थोड़ा सा कम होगा, लाइक 68 तक परसेंट ऑफ योर लेबर फोर्स विल बी वर्किंग इन इनफॉर्मल. तो इनफॉर्मल को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ उनको मिनिमम वेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है. बट आप इनफॉर्मल वर्कर्स का भी पहले एग्जांपल ले लें, ठीक है? अब आप कारपेंटर का एग्जाम्पल ले लें या फिर माली का, गार्डनर का एग्जाम्पल ले लें, राइट? टेक्निकली अनस्किल्ड वर्क, इट इज अ बिट स्किल्ड, बट लेट्स थिंक अबाउट दैट. वो महीने का जो है टेक्निकली गोज टू 5-6 हाउसेज at a point in time, right? You can say one house individually is not paying him 17,500 rupees, lekin agar aap un sab ki agar aamdani combine kare, more often than not you will find that he or she is making more than 17,500 rupees, right? Again, this is a blanket statement and you can prove me wrong. You do not have the data to support ke minimum wage idhar pay ki ja rahi hai ki nahi ja rahi hai, but just it seems like in more cases than not it would have been paid. The formal sector is something that you can talk about quite well. And remember, the formal sector, jo hum ye manufacturing ki baat karte hain ya phir hum services ki baat karte hain, a lot of that is matlab formalized. Agar aapne factory kholi hui hai, you have to have registered your workers, etc. Or plus checks hote hain, spot checks, to find out ki aap minimum wage at least pay kar rahe hain ki nahi kar rahe. Ab minimum wage is, maybe you were not paying minimum wage to all of your workers. Theek hai? कुछ सबसेट होगा जिनको आप मिनिमम वेज पे कर रहे हो, बाकियों को उससे ज्यादा पे करना होगा. व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज मिनिमम वेज फ्रॉम 7,000 टू 17,500? ठीक है, मिनिमम वेज वाले तो यस दे आर अर्निंग अ लॉट मोर एंड यू नो दैट्स प्रोबब्ली गुड फॉर देम, इट्स देयर फॉर सोशल प्रोटेक्शन, बट एट द सेम टाइम जो उनके ऊपर काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम्स प्रोपोर्शनली ऊपर जानी होती है, इफ नॉट मोर देन प्रोपोर्शनली, राइट? सो एक जो ये मेट्रिक है ऑफ इंक्रीजिंग मिनिमम वेज एक्चुअली लीड्स टू हायर वेजेस अक्रॉस द वैल्यू चेन मोर ऑफन देन नॉट. अगेन पीपल विल कम बैक एंड से कि नहीं ये तो नहीं होता और यू नो इट्स देयर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, बट जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक लॉजिकली एंड इन कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड, आई हैव कंफर्म्ड दिस विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स एज़ वेल, के जब मिनिमम वेज ऊपर जाती है हमें बाकी वर्कर्स को भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, राइट? एंड दिस इज सो व्हाई आई वांट टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इज बिकॉज लिंकिंग बैक टू आवर सेविंग पॉइंट, कि हमें सेविंग इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली रियल GDP इंप्रूव करनी पड़ेगी, रियल इनकम्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, राइट? एंड दैट हैजंट बीन द केस इन पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अगर हम अक्रॉस सेक्टर्स देखना शुरू करें, एग्रीकल्चर विच इज योर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, productivity has barely changed, and I can give you a few yields to and define that in a little while as well. Across industries, maybe apart from like the heavy services industry like finance and insurance and all of these white collar jobs, productivity or kahin marginally improved nahi hui hai. And this is, I'm looking at a very long term horizon. Pichle 5 saal dekh le, pichle 10 saal dekh le, pichle 20 saal dekh le, it hasn't changed much. In agriculture particularly, एग्रीकल्चर में सबसे जरूरी पाकिस्तान में है लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स. लाइक थिंक अबाउट दैट, देर आर अदर थिंग्स एज वेल, फिशरीज भी आती हैं, बट लेट्स फोकस ऑन दैट. कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ, एक्चुअली लाइफ स्टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर. मुझे हमेशा से लगता था, अगेन अर्बन ड्वेलर, नो आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर, के क्रॉप्स होंगी बिकॉज दैट्स व्हाट यू सी द मोस्ट ऑफ. क्रॉप्स में वीट इज आर लेट्स से सबसे ज्यादा लैंड एलोकेशन हम जो करते हैं वो वीट ग्रोइंग को करते हैं in the country, but livestock is actually what drives the growth in agriculture the most. So iski agar hum productivity dekhe, and that has been practically unchanged, maybe it's changed by 10% in the last 20-30 years, theek hai? Why that is the case is because humne modernization hi nahi kari hai farming mein, theek hai? Hamari yields jo hai, jo hum seeds use karte hain ya fir hum jo उसके ऊपर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन मैक्रो पाकिस्तानी ऑन दिस, बिकॉज ये एक टॉपिक था जो मुझे समझ में आके नहीं दे रहा था. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि हम अग्रेरियन इकोनॉमी है. अगर हम अग्रेरियन इकोनॉमी है, हम उसके एक्सपर्ट्स क्यों नहीं है, राइट? इफ वी बीन डूइंग एग्रीकल्चर फॉर सो लॉन्ग, इफ वी हमारी इतनी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड देयर, क्यों नहीं होता? इट्स अगेन लिंक्ड बैक टू कि इसमें सीड रिसर्च फॉर एग्जांपल सही तरीके से नहीं हुई हुई. जो हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं, यू गेट इनटू दैट. हम लोग एंग्रो यूरिया बचपन से बहुत सुनते आ रहे थे. यूरिया इज ऑल नाइट्रोजन. व्हाई नाइट्रोजन इज गुड, एंड मे बी वी कैन डू अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन ऑन दिस लेटर, इज कि वो पत्तों को हरा कर देता है. अब वो हरियाली इज समथिंग दैट द फार्मर इज लुक एट एंड थिंक, ओके हरियाली इज ग्रेट, बट हमें एक्चुअली और किस्म के फर्टिलाइजर भी चाहिए टू ऐड टू द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वो. फॉर एग्जांपल लाइक पोटैश, फास्फोरस, बाकी जो आने हैं फर्टिलाइजर, वो हम इतने ज्यादा यूज नहीं करते. हम नाइट्रोजन पे ओवर इंडेक्स करते रहते हैं. तो दैट्स वन रीजन व्हाई योर यील्ड्स आर लो. व्हेन आई से यील्ड्स आर लो, आई मीन लाइक इट्स 30-50% ऑफ इंटरनेशनल बेंचमार्क्स. अगर आप बाकी कंट्रीज में देखें, आपने शुगर केन का बहुत सुना हुआ होगा. हमारी यील्ड और यील्ड, लेट मी एक्सप्लेन दैट अ बिट मोर, इज केजीज पर हेक्टर जो आपने वो प्लांट किया होगा. सो आप कितने कितना एरिया एलोकेट कर रहे हो उस क्रॉप को, और उसमें से आउटपुट कितना निकल रहा है, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ शुगर केन, यू आर समवेयर अराउंड 60 टन्स पर हेक्टर आपकी जो यील्ड है. ग्वाटेमाला, विच इज, यू कांट रियली कंपेयर टू ग्वाटेमाला, बट लेट मी जस्ट गिव यू द बेस्ट प्रैक्टिस, इज 121 टन्स पर हेक्टर. सो ऑलमोस्ट, मतलब डबल से भी ज्यादा ही है, ठीक है? अब उन्होंने सोच के रखा हुआ है, साउथ अमेरिका है, हमारी यहाँ बारिश होती है, सो इट्स लाइक रेन फेड क्रॉप्स, एंड वी आर गुड एट प्रोड्यूसिंग शुगर केन. पाकिस्तान में क्या होता है, शुगर इज जरूर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, तो हमें शुगर केन ग्रो करनी है. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रेंट सीकिंग अराउंड दैट, एंड मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम वी डिस्कस दैट एज वेल. तो हमें बेसिकली हो सकता है शुगर केन ग्रो ही नहीं करनी चाहिए बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हम ग्रो करते हैं और हम बिलो पार ग्रो करते हैं, विच इज ब्रिंगिंग डाउन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटायर सेक्टर. Same thing with wheat, you will see, same thing with rice, same thing with maize, which are the important crops that you grow, same thing with cotton, right? And that's important as well. So agriculture mein yields improve nahi hui. Ab ek aur jo sawal zyadatar bola jata hai, which is, acha sahi hai, hum agriculture mein ab kyun baat kar rahe hain, to bahut aage badh gaye hain. Services, ab hum dekhe, hum IT services export ho rahi hai hamari, aur you know, retail trade aur ye transport kitna upar ja raha hai, which is great. But think about how a country should be growing. Okay, aap matlab, and generally speaking, historically countries were agrarian. ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने आप को वो खिलाते थे. देन दे मूव्ड ऑन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियां लगाई उन्होंने, वही एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है फैक्ट्रियों में गया, वो निकल के फिर बिकना शुरू हुआ. बिका कहाँ से? सर्विसेज में, राइट. सो दैट्स द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ एन इकोनॉमी, कि आप पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करते हो, फिर आप इंडस्ट्री पे फोकस करते हो, फिर आप सर्विसेज पे फोकस करते हो. पाकिस्तान हैपेंड टू मिस दैट स्टेप इन द मिडल, कि पाकिस्तान ने क्या किया, एग्रीकल्चर पे फोकस करा और अभी तक करता रहा, इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस आया, फिर वो हट गया, बिकॉज सर्विसेज बिकेम ऑल ऑफ अ सडन अमेजिंग. व्हाई डिड सर्विसेज बिकम अमेजिंग? क्योंकि हम इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, लाइक आई डिस्कस लास्ट टाइम. जो आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, यू हैव माउथ टू फीड, यू फीड द माउथ थ्रू द किरियाना शॉप्स इन विद इन सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल. अब उसको अगर जो प्रोडक्ट्स खिलाने हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आ रहे हैं, वो इम्पोर्ट कर लेंगे, राइट. आप अ लॉट ऑफ योर कंजम्पशन इज इम्पोर्टेड फॉर दैट रीजन, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी, द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन नॉट मीट. तो इसलिए अगर हम प्रोडक्टिविटी पे वापस अगर मैं कॉन्वर्सेशन लेकर आऊँ, इट इज ग्रेट दैट योर सर्विसेज सेक्टर इज डूइंग रियली वेल, बट द सर्विसेज सेक्टर डिराइव्स इट्स प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिराइव्स इट्स प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्रेरियन सेक्टर फॉर द मोस्ट पार्ट. तो अगर आप सारी वैल्यू चेन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करेंगे, आपकी ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, हेंस योर रियल इनकम्स विल नॉट गो अप, एंड हेंस इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू सेव एज मच.
So what we understood right now is ke, to increase incomes, you have to focus on productivity. Productivity ka abhi, if you have to take a snapshot, challenges kya hain? And what, could you speak a little bit about across this value chain, across these three sectors, what are some things that you that come to mind that can possibly increase the productivity across these three sectors? Do we have the right mix right now in terms of services, agriculture and industry? What should the right mix be? Maybe a little bit about that. And what can be done? You know, you can share some of your thoughts. What can be done to increase productivity across these three sectors?
Great. So maybe before we answer that, yeah, the mix ki jo baat kari. So agriculture makes up 20 to 24-25% of your GDP. Industrial sector hai, jisme manufacturing aata hai, it's roughly 15 to 20%. So agriculture se kam, and the rest is all services. So over 50%, 50 to 60% is all services. This mix, how we should ideally change it, at least is ke hum agriculture pe sahi hain, theek hai, hum services mein zyada hain. So services aur manufacturing mein ek change aana hai, where you start improving the level of industrialization kehlati hai ye, percentage of GDP of industry. We increase that, let's say by 10%, and then you reduce services by that much, right? अगेन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सर्विसेज कम कर देंगे, इट विल जस्ट मीन के इंडस्ट्री विल स्टार्ट मेकिंग अप अ लार्जर पार्ट ऑफ योर जीडीपी, एंड दैट इज हाउ द कंट्री शुड ग्रो विद अ सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस. द सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस ऑल्सो हेल्प्स यू विद एक्सपोर्ट्स, व्हिच एट सम पॉइंट इन टाइम वी विल कवर लेटर एज वेल. इसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करनी है, राइट. एंड इट ऑल कम्स बैक टू, हम ये सेविंग की बात क्यों कर रहे हैं? हम सेविंग की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, और इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट टाइम बात करी थी किस किस्म की होनी चाहिए, इफिशियंसी सीकिंग किस्म की, राइट. वेर यू ट्राई टू लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर. लेट्स से हम एग्रीकल्चर से अगर शुरू करते हैं, यू कैन हैव बेटर सीड रिसर्च, यू कैन हैव बेटर सॉइल रिसर्च. पाकिस्तान में सॉइल रिसर्च काफी लिमिटेड है. टेस्टिंग कराना फॉर एग्जाम्पल सॉइल की, कि उसमें किस किस्म की क्रॉप ग्रो हो सकती हैं, डिसाइडिंग अकॉर्डिंगली आपका कंपेरेटिव एडवांटेज किस क्रॉप में है, किस में नहीं है. लाइव स्टॉक, विच आई मेंशन्ड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. द नेदरलैंड्स में फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी इज ऑफ द चार्ट्स, कभी अगर हम उसकी बात करें. एंड रिमेंबर द एरिया दैट दे ग्रो इट इन ऑल ऑफ देयर एग्रीकल्चर इज द साइज ऑफ मैनहट्टन. आई एम ब्रिंगिंग इन डिफरेंट फैक्ट्स, इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज थिंग्स. बहुत छोटे एरिया में वो प्रोडक्टिविटी दैट किलिंग इट the Netherlands. So maybe there is something that you do with the Netherlands, an efficiency seeking partnership, just to find out ki aap agriculture ko apne revamp kaise kar sakte hain. Within manufacturing, this is happening kafi had tak already, is you start investing in the latest technology, improving your output accordingly. Aap जो आपके फॉर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, योर मेजर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल में हम हायर वैल्यू एडेड ग्रुप गुड्स की तरफ जाएं। अभी हम क्या करते हैं, हम यार्न बेचते हैं, हम कभी निटवेयर बेचते हैं, बट यू डोंट डू व्हाट बांग्लादेश डज फॉर एग्जांपल, व्हिच इज रेडीमेड गारमेंट्स। एथ लीजर का इतना बड़ा वो चला हुआ है आजकल ट्रेंड ग्लोबली, व्हिच इज नॉट रियली कॉटन, इट्स लाइक यू नो सिंथेटिक फैब्रिक बेस्ड या सिंथेटिक फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स विच आर हायर वैल्यू एड। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वैल्यू एड कैसे बढ़ा सकते हैं, सो दैट द सेम पर्सन वर्किंग मे बी इज नॉट वर्किंग फास्टर बट इज जस्ट वर्किंग ऑन हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो आप उससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं एंड ओवरऑल इंडस्ट्री की भी आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकेंगे उस तरीके से। ऑल ऑफ दिस विल चैनल इन टू सर्विसेज देन, सो ऑटोमेटिकली टू अ सर्टन एक्सटेंट उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्टफ दैट्स कमिंग अप एंड we will have hopefully a detailed session on digital Pakistan at some point in time. So hum services ki usme baat karenge. I think that's a great way of improving productivity at the services level.
So I think thoda sa backlash to mere khayal mein main expect karta hu, kyunki once you start saying ke you move back, you refocus a little bit on industry, on manufacturing, तो यू नो यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल पॉपिंग अप एंड सेइंग कि दुनिया आगे बढ़ रही है, सर्विसेज की तरफ ज्यादा रुझान है, आईटी की एक्सपोज बढ़ रही है और यू आर टेकिंग अस बैक टू द स्टोन एज, नॉट एक्चुअली स्टोन एज बट यू आर टेकिंग अस बैक टू मोर मोर प्रिमिटिव इयर्स, जिसमें आप बोल रहे हैं कि यार इंडस्ट्री पे वापस लोग फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक
आई विल लेट मी जस्ट इंटरजेक्ट इन केस दैट बैकलैश डज कम अबाउट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि सर्विसेज ग्रोथ कम कर दें, हम बोलना सर्विसेज ग्रो करें, यस, बट मैन्युफैक्चरिंग योर इंडस्ट्रियल बेस शुड बी ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन सर्विसेज, सो दैट इट कैन टेक अप अ लार्जर शेयर ऑफ जीडीपी देन इट डज राइट नाउ। अभी फॉर नाउ योर पाकिस्तान इज डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, आप जहां होते थे आप उससे व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट लेट्स से आई थिंक 10 इयर्स और सो, आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज गॉन डाउन बाय 2% पॉइंट्स, manufacturing and industry also has gone down by 2 percentage points, services has gone up by 4 percentage points. So abhi basically services upar jai reh rahi hai. I'm just saying isko thoda sa stall karne ke liye, let's increase manufacturing as much as possible, let's increase industry as much as possible. Industry mein construction bhi aati by the way, so like maybe in a bit when we talk about consumption it will be linked ki aap construction ko bhi improve kare. I'm not saying let's not improve construction, but I would over index on industry because we have left it ignored for a pretty long time.
So interesting way to segue into the next point is ke you spoke about incomes, you spoke about productivity, ab jo teesri cheez aati hai ke consumption is still extremely high. Why is it high and how can we possibly bring this down?
Great. Or again, these conversations don't happen as often as they should be, right? कि consumption led growth की तो बहुत बात होती है पाकिस्तान में, कि consumption driven economy है, a lot of mouths to feed. But when you start looking at the breakup of consumption, कि पाकिस्तान में private consumption जो हमने बोला 80% आपकी GDP consumption की है, इसमें what are the buckets that you spend your money on? Obviously there is food, right? And food takes up 35% roughly of your consumption bucket. ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंपेयर टू अदर लो मिडिल इनकम कंट्रीज, आप वियतनाम ले लें, इंडिया ले लें, दिस इज वेरी नॉर्मल कि आपकी 30-35% ऑफ योर इनकम हैज टू गो ऑन फूड. इन डेवलप्ड कंट्रीज येस दैट शेयर गोज डाउन, बट फॉर लो मिडिल इनकम कंट्रीज इट मेक्स सेंस दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर इनकम ऑन फूड इटसेल्फ. सो नॉन फूड कंजम्पशन इज व्हाट आईड लाइक टू फोकस ऑन एंड इफ यू चार्ट इट आउट अगेन यू विल सी कि हम पाकिस्तानी जो है ना, अगर हम वियतनाम या इंडिया का एग्जांपल ले लें, वी स्पेंड ट्वाइस एज मच ऑन हाउसिंग एंड यूटिलिटीज देन द नियरेस्ट कंट्री. ट्वाइस एज मच, मैं कोई परसेंटेज पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, इट्स हमारी जो कंजम्पशन बकेट है उसमें से 30-31% इज हाउसिंग एंड यूटिलिटीज, राइट? इन वियतनाम द सेम नंबर इज अराउंड 16%, इन इंडिया इट्स 17%. सिमिलर कंट्रीज and they are spending half as much on housing and utilities. That has to mean something, right? Itna bada farak nahi hona chahiye. And I think the obviously the number one issue has been the fact that hamari housing ki shortage koi 90s se chalti aa rahi hai. you start looking at reports and you will see 98 mein, I think they identified koi 4 million gharon ki shortage thi. Today the shortage is over 10 million. Ye shortage increase hoti ja rahi hai, which means demand for housing is going up. Prices for housing, I'm sure everyone has felt, has been going up. Aur ye consumption basket mein aapki increase hoye ja rahe hai iska share, right? The dusri baat utilities, bijli ke masle sabne dekhe mein, abhi bhi latest tariff hike aayi hai, and it will keep on coming. We have one of the cheapest electricities in the region, so I'm not saying it's a lot. It's just getting worse. That's the point that I'm trying to make. Ke humari consumption basket mein housing and utilities is too much, which is why something like Naya Pakistan Housing Scheme is actually a great thing for me, right? And it's not the first time any government is tackling low-income housing. PPP ne bhi koshish kari thi ek zamane mein. But I guess this is the first time that the whole ecosystem is trying to come together, right? Ke aap, ek to aapne scheme kholi hai. Yes, usme bahut rent seeking ho rahi hai, and there are all of these builders doing a bunch of stuff. But we need to focus on what the aim is. The aim is to provide low-income housing to people who are spending an outsized amount on housing right now, right? That needs to be solved. Agar aap isko solve karenge, mere hisab se, consumption will automatically, as a share of GDP, start going down, right? You will invest right now to make sure consumption in the future goes down. You start saving more, hence you will end up investing more, aur phir aap baaki cheezon pe focus kar sakenge. Abhi filhal jo hai, there is no capacity to save in our country. That's let me stop there and see if you have any questions.
So that's a very interesting point, and we get into that because agar issue hai, and we compared ourselves to Vietnam, we compared ourselves to India, very relevant examples, very accurate comparisons. Yeah, you're standing at almost twice in terms of housing costs and utilities as a group, if you group them together, almost, right? And utilities, then you obviously break it down into electricity, into gas, into water, into XYZ. So we'll get into those we'll dedicate episodes, complete episodes into getting into electricity, into housing. Kyunki ye kaafi bada masla hai. You can have political point scoring over that, you can have whatever you want, but there are people and there are forces that are working towards that, how successful they are, what the problem is, where do we see Pakistan in the next couple of years, like achieving meaningful progress in those areas? So we'll get into that. Could you, this last point that you said, and I understand that people will have a problem, might have a problem understanding this. So when we talk about private consumption ki, and what is left over is savings, could you briefly explain ki private consumption and savings and how those savings result into investments and then GDP growth? Could you really break that down and explain more, easily to the audience? Ki hota kaise exactly? So that people have an understanding ki acha isse kya farak padega.
Again, we have kept it simple so far, aur hum sirf private consumption ki baat kare, or we left it at 80% of your income is spent on consumption. Ye humne abhi tak basically bola hai, but that's actually incorrect. You actually import more import products and consume that as well, jo ki aapki GDP mein count nahi hota. So your consumption is actually greater than 80% if you think about at a household level. Ab ye convert jo aapne ye life cycle ki baat kari ke, how do you first save and then how do you invest that? So aapko mahine ki aamdani aa rahi hai, let's say 50,000 rupees, right? Usme se, according to macro numbers, you are spending more than 40,000 rupees on consumption itself. Consumption ka matlab jo humne sari cheeze abhi tak discuss karni hai, ghar ki ikhrajat ya phir khane ke ikhrajat, jo aapke paas 8-10,000 rupees bache hain, aap us paise ke saath abhi kya kar rahe hain, right? That channel is also important, but let's get into that in a little while. Main bol raha hu ye pehli jo hai, 8-10,000 ka amount jo hai, that's actually not the same across the country. Aapne hand to mouth ka bahut suna hua hoga, urban areas, rural areas, if you start breaking it down by what's called income quintiles. Income quintiles ka matlab ke bottom 20% kitna income hai unki aur kitni consumption hai versus the top income quintile ke top 20% unki income kitni hai aur unki consumption kitni hai. If you start looking at the numbers, you will see ke shuru ke, I would say, shuru ke 20%, agle 20%, like let's say the bottom 60% of the country essentially lives hand to mouth, ठीक है, वो ओवर 95% ऑफ देयर इनकम वो कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ दीज बॉटम 60%, राइट? नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि वो ये लोग सेव करेंगे और इनकी इनकम्स eventually factory setup karegi, right? That is not how it globally works as well. Globally, the richest of the country save the most, and that is channeled into investments. Okay, so that I would rather focus on the saving component in the highest income quintiles of the country, because it's more realistic for that to come about. But Pakistan mein, again, I feel bad कि मैं सिर्फ मसले को मसले identify करते रहता हूँ और अच्छी बातें नहीं कर रहा. Hopefully we can get into that as well, कि हमारी urban top 20% का अगर हम example ले लें, right? The essentially the richest of the country, till about 2014 they used to spend 80% of their income on consumption.
Just to pause you there, Faiz. Yep. When you break Pakistan down into this into quintiles, into groups, 20%, lowest 60% and upper 20%. Could you give the audience a view कि आप जो top 20% में हैं, वो किस income level पे आते हैं? Because I think that's a big misunderstanding what people have.
Yeah. So income bracket, again, there are different versions of this, but income bracket, you will be surprised to know, is monthly household income of around 65,000 is the average income of the highest income bracket. So it's pretty low. It's not that high. Lekin main inhi ki abhi bhi baat kar raha hoon. The lowest income quintile by comparison has an average household income of 24,000 at an urban level. So like think about that. At a rural level, it's even lower, around 21,000. But jo hum main jin abhi bucket ki baat kar raha hoon, which is highest income earners in urban areas, the average income is around 65,000 and above. First, it's surprising that all of this data is available, by the way. Okay, I was very impressed. Okay, matlab, but we're actually tracking all of this household data. If anyone has free time, they should read the Household Integrated Economic Survey. It's a great read. It's a eye-opening for a lot of people, certainly for me, because 65,000 does not sound like the top income earners of the country, but that's how it stands, right? I was going to give you more bad news, which is in 2014, is income mein se, so at that time, income used to be around 46,000 actually in 2014, usme se 80% consume karte the, right? Today, when it's at 65,000, you actually spend more, 86% of that income. So unki saving capacity has actually been going down. Which is, हम ये चैनल की तो बात कर सकते हैं कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, बट वेन देयर सेविंग इज गोइंग डाउन, दैट समथिंग आई थिंक वी नीड टू एड्रेस फर्स्ट बिफोर वी गेट इनटू कि इन सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट में चैनल कैसे करें.
सो जस्ट टू रीकैप, द कोहोर्ट, द पीपल, द ग्रुप दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू सेव द मोस्ट, व्हिच विल चैनल बैक इन द कंट्री इनटू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इज एक्चुअली एज अ परसेंटेज कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस. Am I getting that right?
Exactly. And that's a function of a few things, right? Unki income basket now veers towards more imported goods. So wo jo consumption thi, unki price increase ho gayi. At the same time, inflation went up significantly, which meant ke unki consumption basket jo cost thi, wo went up. Humne shuru mein baat kari thi ke logon ne pichle 2-3 saal mein baat karte hain ke real personal incomes are actually going down, which is true. I just wanted to take a longer view to show you what has happened in the last 30 years. But in the last few years, it hasn't been smooth sailing, even for the richest in the country. And that's something to take away. But Inki, let's get into the next question, which is, aapne bola tha, saving channel to investment kaise hona chahiye? Interesting fact. So agar hum sirf agar in affluent class ki baat kare, is affluent class mein ek survey kiya tha Standard Chartered ne a few years ago. Just to find out ke, you know, what are their spending habits in terms of financial technology, agar aap le le, ya financial services pe kya kharche karte hain wo. And overwhelmingly what they found out is ke 50% of affluent Pakistanis save by storing cash at home. 50% save cash at home. That's how they do saving, right? Compare this to countries like, worst example le raha hu main us report mein, worst example is India at 15%. 50% पाकिस्तान में कैश में सेव कर रहे हैं, इंडिया विच इज द नेक्स्ट वर्स्ट एग्जाम्पल इज एट 15%, विच मीन्स हमारे यहाँ कोई अवर्जन है टू द फॉर्मल सेक्टर, टू लाइक डिक्लेयरिंग योर इनकम, टू डॉक्यूमेंटिंग योर इनकम, कीपिंग इट इन बैंक अकाउंट्स, विच बाय द वे एज यू मस्ट नो फॉर श्योर आर प्रोवाइडिंग क्वाइट सॉलिड रिटर्न्स. आप अपनी स्टॉक मार्केट को देख लें, मतलब इट्स अप, आई हैवन्ट चेक द नंबर्स राइट नाउ, बट आई एम समवेयर अराउंड 60% सिंस लास्ट ईयर. लेकिन ये कैश घर पे बैठा हुआ है, राइट? इट्स सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट ए रिचेस्ट की इनकम थोड़ी बहुत कम हो रही है, और जो इनकम कम हो रही है और जो सेव हो रही है, जो सेविंग बच रही है उसके बाद, वो कैश की सूरत में घर पे बैठा हुआ है, लाइक मैट्रेसेस के अंडर है या जहां पे भी है, लॉकर में पड़ा हुआ है.
इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग. आई रिमेंबर 2017 की एससीबी की रिपोर्ट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट है, इट एक्चुअली मेंशन्ड द वर्ड मैट्रेस. And I was surprised, and I was also, that's what got my attention as well, because at every, almost every point, at every standard, you were standing at the last. And it amuses me because aapke banking products pe returns hain, you know, your stock market is doing really well. You have avenues available, and you're digitizing, you're doing all the right things. And still people prefer to hold cash. You've mentioned some of the points, maybe because it's documentation, people don't want to declare their income, people don't want it to be public. Maybe there's other angles to that, but yeah, predominantly people have chosen to keep it under, in these exact words, their mattress.
Yeah. और अगेन इसमें एक और जो मैं पॉइंट ऐड करूंगा, रिमेंबर ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आई एम श्योर द नंबर इज वर्स फॉर ओवरऑल पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमर्जिंग अफ्लुएंट ऑफ द कंट्री जो कि ये कैश स्टोर कर रहे हैं. यू नो, इन अदर कंट्रीज टिपिकली दे सेव इन डिपॉजिट्स एट द बैंक, या फिर सेविंग अकाउंट अगर खोल दिया, टाइम डिपॉजिट खोल दिया, जिसमें वो इनकम अर्न कर रहे हैं, एंड दैट इनकम ऑल्सो चैनल्स इनटू इनकम ग्रोथ इन द फ्यूचर, which means they can possibly save more in the future, like if you put the entire thing together. Another thing is technology, right? So in this survey, if you must have read the survey as well, if you frequently use digital services, your tools, if you start using them, you save 8% more than someone who doesn't. But a simple fact, if you use more digital, you will save more. Right, Pakistan mein the use of digital services is again the least out of all comparable countries. Ab main again China se compare karna to itna fayda nahi hai. 10% of emerging affluent Pakistanis save using digital tools or use digital tools at all. India mein same number is 43%. Theek hai, to aap 10% wo 43%. So it's just at every metric that you start looking at, it just seems ke there is a love for informality in the country. There is a love for cash in the country. Even aapne agar latest reports dekhni shuru kari ho state bank ki, you know, there is a bit of talk about e-banking going up quite a lot, which is fantastic, right? Electronic banking going up in Pakistan, you know, nothing can be better. But understand ke e-banking mein bhi kya aata hai? Like, what is the component of e-banking? Which is super important. ठीक है, उसमें e-banking में आती है all the financial technology stuff which you probably already know about, which is internet banking, mobile banking, POS machines हो गई जो आपके अगर shop पे जाते हैं और card swipe करते हैं, e-commerce हो गई, वो हो गई, but yeah, so then but the two biggest are still branches and ATMs. ठीक है, अब branch पे जो transaction हो रही है, most of that is cash based. आप उधर जाके transfer करते हैं, आप cash deposit करते हैं, cash withdraw करते हैं, cash based. ATM का सबसे पाकिस्तान में basic मकसद जो है, वो cash withdraw करना है. So all of this is what's called paper based transactions. तो e-banking के अंदर भी तकरीबन 70% of all transactions within electronic banking are actually not digital. They are paper based transactions. तो amazing that e-banking is going up in the country. Amazing that they're starting to adopt a few digital tools. Lekin truly digital, aap abhi bhi nahi hai, right? Unless you are truly digital, let's say the financial technology, specifically like you know, the company that you work for as well. If penetration of those things don't start going up, aap us saving ko investment mein convert karna bahut mushkil ho jayega. जब वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वही होगा जो अभी तक पाकिस्तान में होता रहता है. ये कैश पड़ा हुआ होता है, ये कैश फिर जाता है रियल एस्टेट में प्लॉट्स खरीदने के लिए, या फिर जाता है ये गोल्ड बार्स खरीदने में. यू विल दिस इनफॉर्मल सेविंग, कैश बेस्ड सेविंग विल हार्डली ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स, एंड दैट इज एन इशू दैट पर्टेन्स टू द रिचेस्ट ऑफ द कंट्री. रिमेंबर दैट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये कि कोई ऑफेंड ना हो जाए. दैट दैट इज बेसिकली द बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग द लिमिटेड सेविंग्स यू हैव इन द कंट्री टू इन्वेस्टमेंट्स इवेंचुअली. तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम बात करेंगे सेविंग बढ़ाएं, इनकम्स बढ़ाने के थ्रू या कंजम्पशन कम करने के थ्रू, बट दैट चैनल फॉर सेविंग टू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी हैवली वर्कड ऑन.
So, I'll probably be, this will be my final point, so I'd like to end on this, is ke now you have the affluent, the rich, jinko hum dekh rahe hain, ke you need to incentivize them to save more, consume less, whatever. So there's two points of attack for this. There is the individual point of attack, like, what should individuals, how should individuals be, these individuals be incentivized? And what can the government or state-run entities do to bring the system into a position where there's a high level of savings and savings are channelized into productive assets?
Okay, but again, let's break that down into two, right? Which is, pehle to aapko savings badhani hai, which is everything that we've spoken about over here. I think the current government is actually doing a bit. I wouldn't want to criticize it as much. There are, you know, there is a focus on textile, for example. There is a focus on export for now. There is a focus on the Naya Pakistan Housing Scheme. There is a bunch of stuff that they're doing, which is pretty good. The SECP, like we mentioned last time, is doing a lot on ease of doing business. State Bank is actually trying to do a lot on improving the use of digital financial technology. So in terms of regulations, in terms of lawmaking, I think we have started coming on the right track. So wo income us tarah improve ho jayegi aur consumption us tarah kam ho jayegi. How I would suggest we start looking at converting the existing savings at least into proper investments, into productive investments, is through financial literacy. Right? Agar aap financial literacy with conversations like these is also important. So I don't have the numbers at hand right now, but I remember S&P has done a global literacy survey karte hain wo Pakistan mein. Again, like all of these surveys unfortunately rank Pakistan towards the lower end, or 25-26% aapki financial literacy thi, right? If I remember correctly, less than 15% or 15% were saving for retirement. Pensions ki baat ho jayegi at some point in time as well. I think you need to channel, you need to have deeper capital markets, and you deepen capital markets through, or capital markets, when I say capital markets, I mean stocks, bonds, jo aapki puri financial institution hai in the country, isko aap retail investors ke through deepen bahut kar sakte hain, right? Right now, 0.13%, if I'm not wrong, of adult Pakistanis invest in stocks, which is a problem for you, which I think you might have a better idea of how to improve. But in my macro personal opinion, it's...
Yeah, so 200,000, 250,000 UINs on paper. The actual participation in markets is nothing to speak about. So ye to hum logo khud ko bhi, when we started off Investors Lounge, this was a learning for us as well, ke the quoted figure versus the actual participation, the actual volumes, the actual number of people involved in the market, and the depth of retail participation is far from where we should be. Comparable countries. You're not comparable to Bangladesh. Bangladesh, I think, has in excess of 2 million or so investors. Anyway, you compare yourself with Sri Lanka, which is a tiny country, right? Sri Lanka has more retail investors. Bangladesh has more retail investors. India, obviously, in terms of population, you can't be comparing them. In terms of percentages, I think we are the lowest amongst all of these percentage countries. I think you hit the right figure, 0.1 or 0.13%. You should be at the very least at 1%. I'm not even talking about USA, which is probably 50 to 60% of the population.
It is at 60%.
It's insane where we are standing.
But I think there is improvement though, like that, to end on a happy note. And this is not me praising macro or like praising Investor Lounge over here, but the kind of content that I see on social media, which is educational now. State Bank ne bhi ek web app nikali hai, by the way. I don't know if you've checked that out. for improving financial literacy. The kind of DMs I get, you know, direct messages on social media is also like very, I'm very surprised at like people are actually engaged. People are thinking about how to save more or invest karni hai to kahan kare. WhatsApp groups, which are pretty famous in Pakistan, are all buzzing with conversations like these. Kahan paisa dalna chahiye, kya invest karna chahiye. Maybe real estate ki zyada baat ho rahi hai aajkal, jitni nahi honi chahiye. But still, I think we are moving towards a space where people are becoming a lot more aware, and hopefully it's just part of the progress the country has to make to move towards more digital, more saving, more investment in the future. And yeah, let's explore more topics in the future like this.
And that's why I think both of us are so excited about what we've started. The conversations around financial literacy is happening at the regulator level, as well as these private small companies, the startups are doing their best, whether or not they see monetization and you know, revenue coming in from these or not. They just do it for the purpose. This group of people have to increase. Our families should be able to benefit from good investment planning, from good financial planning. The conversations around budgeting, about savings, about using financial investments to prepare and to secure your financial future. That conversation needs to happen a lot more. It needs to happen in colleges. It definitely happens in some broken form at Chotu Chai Wala and Chai Diwali. I hope people are taking care of what they're putting forward in terms of financial advice. We're very careful of that. But yes, colleges, universities, online, encourage people to consume as much as information and content as possible, because you can make a massive difference in your family's future based on the small changes and adjustments that you can make today. This is already a big thing in developed countries. And in countries like ours, I think it'll make a massive difference. Thank you, Fez. Thank you for summing this up. We've spoken about incomes, we've spoken about productivity, we've spoken about consumption, why Pakistanis have not been able to save, and how is that reflected in our investments, what the role of technology is right now, what is being done, and how are we looking, what are we looking at, staring at right now. Thank you for sharing your thoughts today. We will, as for the audience, we will try and do dedicated episodes on all of these topics, because there's a lot to unpack here. Sirf utilities mein agar hum bijli ki baat karein, gas ki baat karein, you, me, all of us don't know most of the story. So there's very little that we actually know. There's a lot that we don't know about the story, and understand that will allow you to make a difference in your lives. So with that parting note, until next time, see you. And see you very soon. Thank you, Fez, for being with us today. And
thank you.
Look forward to the next conversation.